ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தேனே வாலேனே தோ बड़े दया करके हमें दिया, कृपा करके हमें दिया, लेने वाला बड़े अहम से बोल उठा कि ये मेरा है और इसमें मेरेपन की हमारी ऐसी आसक्ति हमने बांध ली शरीर के साथ. आसक्ति किस में है? बोले शरीर में. ममता किस में है? संसार में. संसार से ममत्व जुड़ा हुआ है और शरीर से आसक्ति जुड़ी हुई. जब तक हमारे शरीर से आसक्ति नहीं जाएगी तब तक मन से संसार का ममत्व तो नहीं छूटेगा ना. संसार का ममत्व तो तब तक नहीं छूटेगा जब तक हमारी आसक्ति अपने शरीर से नहीं छूटेगी. हम यूं तो चाहते हैं कि संसार से मेरा ममत्व तो कम हो करके भगवान में ममत्व तो हो जाए, भगवान के साथ ममत्व जुड़ जाए, ये तो हम चाहते हैं, परंतु अपने शरीर से आसक्ति नहीं छोड़ पाते हैं. आसक्ति शरीर से क्या है? जो शरीर हमारा दिख रहा है, बस हम इसी को सब कुछ मान करके सुबह से लेकर हम अपने शरीर के साथ जो मैं बुद्धि जुड़ी हुई है, ये शरीर मैं हूँ, और इसी के मान को अपना मान, इसी के सम्मान को अपना सम्मान, इसी के निरादर को अपना निरादर, इसकी स्तुति को अपनी स्तुति, इसकी निंदा को अपनी निंदा हम मान बैठे हुए हैं. परंतु नारायण संत कहते हैं, सबसे पहले अध्यात्म योग को प्राप्त करने के लिए, अपने भीतर अपने स्वरूप में आने के लिए, हमें अपने शरीर को अपने से अलग करना हो. तो साधन जितना समय लगता है, याद रखो, सर्व संगो ही माम, भगवान ने भागवत में मुक्त संग ब्रह्म जितना, शरीर से जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी, जब तक शरीर से आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक भगवत स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती. आसक्ति को छुड़ाने के लिए हमें एक ही उपाय बताया गया कि सत्संग करो. सत्संग करो. सत्संग करने में हमारी कोई कमी नहीं. प्रेमपुरी वालों के ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा, यहाँ बहुत सत्संग आपको मिलता है. पर वो सत्संग हम आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सत्संग सुना हमने, अमुक महात्मा को भी सुना, अमुक महात्मा को भी सुना, संतों को हम बहुत सुनते हैं, संतों को बहुत सुनते हैं, पर वो संतों को सुनते ही रहते हैं बेचारे, उससे आगे कुछ करते नहीं. जो संतों को खाली सुनते हैं, हमने फलाने संत को भी सुना है, फलाने संत को भी सुना, उन्होंने सुना ही सुना. सुनने का काम तो कानों का होता है नारायण. कान खाली सुनते हैं, परंतु यदि वो श्रवण किए होते तो जरूर 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 उस पर असर होता कि जो कुछ हम सुनते हैं उसे अपने मन के साथ एकाग्र करते हुए, उसे अपने भीतर अपने चिंतन में लाते, और अपने जो वस्तु चिंतनगत हो जाती है वो निरंतर अभ्यास में भी आ जाती है नारायण, आचरण में भी आ जाती है. अपने आचरण में वो करने के लिए है, केवल सुनने के लिए नहीं. सत्संग सुनने के लिए नहीं होता. सत्संग तो करने जब व्यवहार में आते हैं तो फिर वही के वही हमारी प्रवृत्तियों में, हमारे आचरण में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में कहीं ये स्पष्ट नहीं होता. तो बड़ा दुख होता है उस समय, हमारी स्थिति वो न बनने पाए. हमें अपने जीवन में अपने आचरण में लाने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए. बोले संतों को सुन करके, अब पहले मैंने बात आरंभ की, हम अपना स्वभाव नहीं बदलते, हम अपनी परिस्थितियों को बदलते. जहां से मैंने बात आरंभ की थी, हमारा सारा जीवन में यही प्रयास है. मेरी परिस्थितियां बाह्य होती हैं, उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में तो हम लोग लगे रहते हैं, परंतु अपने स्वभाव को बदलने में नहीं लगते हैं। इसलिए आइए स्वभाव बदले, स्वभाव बदले, सत्संग करें। स्वभाव हमारा कैसा है? स्वभाव हमारा अच्छा था परंतु स्वभाव हमारा बिगड़ गया है। बोले किसके कारण बिगड़ा है? कुसंग के कारण बिगड़ा है। स्वभाव बिगड़ने का बड़ा कारण क्या है? कुसंग है। कुसंग वो संग है जो हमें भगवान से हटा करके संसार की ओर ले जा, कुसंग में पड़कर हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, दिन रात जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस वहिरता में हम गुजर रहे हैं, देखो ये सुसंग है कि कुसंग है। प्रेमपुरी का सत्संग एक घंटा और बाकी संसार का, सुबह यहां से जाने के बाद आपको सुसंग मिलता है या कुसंग मिलता है, विचार करो। जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, जो देखना है, जो उठना है, जो बैठना है, वो सब किसके साथ में है, कैसे लोगों के साथ में है, कैसा हम चल रहे हैं। इसलिए ये जो वातावरण है इसमें हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा? बोले इसमें स्वभाव को बदलने के लिए हमें एक घंटे का जो समय मिला उसमें जो हमने सुना उसके संस्कार को हम इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि हमारे ऊपर कुसंग प्रभाव न डाल सके, उसी के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है नारायण, बहुत बड़ा बल होता है जिससे हमारा जीवन की एक दिशा बदल सकती है, जीवन का सोच बदल सकती है। इसलिए आइए इस जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए मैं और मेरे ये निश्चय करो, ईशावास्य में हमें जाना है तो पहले हमें ये निश्चय करना है कि मेरी जिंदगी में अब तक मैंने मैं मेरे के साथ में जिया हूँ, अब तू तेरा ये कहकर ये समझ करके मुझे अपना जीवन जीना है, ये निश्चित करें। और तू तेरा, तू और तेरा, ये जो तेरा है स जकल जगत, ये सकल पसारा, जिस पसारे को, जिस प्रपंच को, ये प्रपंच किसका? बोलिए ये प्रपंच रूप किसका? ये सब उसी का है। इसलिए तू और तेरा, तू मेरा, मेरा नहीं, तू और तेरा, ये सब तेरा है, तेरा है, तेरा है। ऐसे प्रभु तू तू करता भया, मुझ में रही न हूं, आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तू। जब तक मैं और मेरा करता रहा तब तक तू मुझे नजर नहीं आया, जब तू और तेरा करता रहा तो मैं और मेरा मिट गया, समाप्त हो गया। हे गोविंद, हे प्रभु, ये सब आपका है। ऐसा सोच करके हमें अपने आप में अपनी इंद्रियों की अशांति को दूर करके अपने स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए, अपने भीतर अपने आप में जुड़ने के लिए विचार करना होगा। जहाँ ये शरीर रह रहा है, ईशावास्य विदम, जिसमें हम रह रहे हैं, ये जगत जो पसारा है, ये क्या है? बोले ईश्वर से ढका हुआ है। ईशावास्य विदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर का है। तो ईश्वर के इस जगत को हम कैसे समझे? एक छोटे से उदाहरण से समझें कि इस पृथ्वी में बहुत बड़े अत्याचार, एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी में बड़े बड़े अभिमानी अत्याचारी राजा हुए और पृथ्वी अभिमानियों के अभिमान के भार से दबी हुई, ये पृथ्वी गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और ये घटना है त्रेता की। भगवान जब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पृथ्वी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव के पास जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु इस पृथ्वी में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, ये पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पा रही है। और उस पृथ्वी ने रुदन करते हुए कहा कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे ये अभिमान का बोझ उठाया नहीं जा रहा है, मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो। भगवान शिव, ब्रह्मा जी आदि विचार करने लगे कि इस पृथ्वी को का भूभार, जो भार है उसको हल्का कैसे किया जाए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, तो निश्चय किया कि भगवान ही अवतार लेंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी का भूभार हरण होगा, भूमि का भार हल्का होगा। तो बोले भगवान कहाँ है, प्रश्न हुआ कि भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान, कहाँ खोजा जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शिव से जब प्रश्न किया गया कि भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे भगवान, भगवान शिव ने उत्तर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो सब जगह व्यापक है, सब जगह है, कहाँ नहीं उन्होंने किसी जगह नहीं, वो तो सब जगह, सब सर्व काल में, सर्व वस्तु में, सर्व देश में, और जिसमें काल वस्तु देश का कोई भेद नहीं, सर्व व्यापक रूप है। भगवान हरि तो सर्व व्यापक है, जो व्यापक है तो अंदर भी है और बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। व्यापक तो वो होता है जो सब जगह हो। बोले वो तो सब जगह है, सब सर्व व्यापी है। तो ऐसे व्यापक भगवान को, वो व्यापक तो है पर नजर तो नहीं आता, और जब तक स्पष्ट नहीं होगा, नजर नहीं आएगा, तब तक पृथ्वी का भार हरण नहीं हो सकता है। व्यापक है ये कह देने से, जैसे प्यास जल से दूर होती है, ये ज्ञान हो गया, और जल 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 हम बोलने भी लगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। उसके लिए प्रत्यक्ष जल चाहिए, प्रत्यक्ष जल चाहिए, प्रत्यक्ष भोजन चाहिए। तो इसलिए प्रत्यक्ष का महत्व है, प्रत्यक्ष हो। बोले प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो। तो वो प्रत्यक्ष कैसे होगा, सामने कैसे आए, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। बोले उसके लिए कैसे प्रत्यक्ष किया जाए, उस व्यापक को कैसे सामने प्रकट किया जाए, उसके लिए एक उपाय है। एक उपाय क्या है, ये उपाय भगवान शिव कहते हैं कि केवल वो प्रकट हो सकते हैं, तो उसे सामने लाया जा सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है। तो एक ही बल काम करेगा, एक ही बल काम करेगा, वो कौन सा बल, प्रेम का बल। प्रेम के होए प्रगट में जाना, जब प्रेमातिरेक होता है, इस प्रेम को भक्तों ने भक्ति शब्द दिया, और इस प्रेम के अतिरेक से ही भगवान प्रगट हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त उनको प्रगट करने का, वो व्यापक तो है पर प्रेम से वो प्रत्यक्ष हो। तो जब तक उस स्वस्वरूप आत्मा के साथ प्रेम हमारा नहीं जुड़ेगा, तब तक वो उसका स्पष्टीकरण कैसे होगा। अध्यात्म में अर्थात उपनिषद सुनने के लिए, जैसे जैसे भक्ति में भक्त भगवान से प्रेम करता है, भक्त भगवान से प्रेम करता है, उसी तरह से जब तक हमारी अपनी निष्ठा, अपना प्रेम अपने स्वस्वरूप के साथ नहीं होगा, तो आप कहेंगे प्रेम तो आप करते हैं, सबको अपना आपा प्रिय है, अपना आपा तो सबको प्रिय होता है, उसके लिए प्रेम करने की क्या आवश्यकता है। बोले ना, अपना आपा प्रिय तो है, पर अपने आपे को हमारे साथ एक बहुत बड़ी भ्रांति हो रखी है। भ्रांति क्या हो रखी है, समझ, एक उदाहरण से समझे, विषय को समझने के लिए उदाहरण है कि पहले के समय में राजा लोग, राजाओं के यहाँ कन्याओं का स्वयंवर हुआ करता था, राजकुमारी का। तो जब कोई राजा किसी स्वयंवर में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता था, तो वहां उसकी तलवार भेज दी जाती थी, तलवार को माला पहना करके स्वयंवर में की बात पूरी हो जाती थी। तो ऐसी ही एक घटना हुई, एक राजकुमार ने तलवार भेजी, राजकुमारी ने माला पहनाई, स्वयंवर हो गया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उस राजकुमार के मन में ये भावना आई कि राजकुमारी की परीक्षा करो। उसने परीक्षा करने के लिए राजकुमारी को पत्र लिख करके भेजा और उस पत्र में उसने बहुत स्नेह, बहुत प्रेम प्रकट किया हुआ था। राजकुमारी ने उस पत्र को जब पढ़ा तो उसे पढ़कर ऐसा लगा कि मुझसे इतना स्नेह करने वाला ये राजकुमार, जो मुझे इतना चाहता है, इतना स्नेह करता है, वह उस राजकुमार की ओर आकर्षित हो गई। और जब आकर्षित हो गई, उसका आकर्षण हुआ, तो राजकुमार प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष होने पर जब राजकुमार सामने आया तो वो वही था उसका जो पति था, जिसको उसने स्वयंवर में वर के रूप में चुना था, वही था। परंतु राजकुमार के मन में एक बात खटक गई, खटक ये गई कि राजकुमारी ने जो मुझे चाहा है वो स्वयंवर होने के बाद चाहा है, मेरा परिचय तो था नहीं, इसका मतलब राजकुमारी ने मुझे अन्य राजकुमार समझ करके स्वीकारा है, इसलिए इसके पातिव्रत धर्म में, इसकी निष्ठा में खोट है, ऐसा समझ करके उस कन्या का उसने त्याग कर दिया, उस राजकुमारी का त्याग कर दिया। तो जिसके कारण राजकुमारी को दुख मिला, तो यहां समझने वाली बात यह है कि राजकुमारी ने चाहा तो किसी और को नहीं, चाहा तो अपने ही वर को, परंतु वो अन्य समझ के चाहने के कारण उसे ये दुख उठाना पड़ा, ये दुख भोगना पड़ा। यही उसी तरह से हम प्रेम तो अपने आप से ही कर रहे हैं, अपने स्वरूप से ही कर रहे हैं, परंतु उसमें अन्य होने की भ्रांति है, अन्य मान करके, आत्मा न मानकर अन्य मान करके हम चाह रहे हैं, उसके कारण हमें अन्य के कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। उपनिषद क्या करती है? उपनिषदें हमारे अंदर जो अन्य की भ्रांति है, अन्य की मान्यता है, उस अन्य को हटा देती है, अन्य को दूर कर देती है। जब अन्य दूर हो जाता है तो वो प्रेम अनन्य प्रेम, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा समझ करके वो आत्मा के साथ वो निष्ठा जुड़ जाती है। और उस निष्ठा के जुड़ने पर ही आत्मा की कृपा, आत्मा की निरावरणता स्पष्ट होती है, जिसमें हम अपने स्वरूपभूत आनंद को, स्वरूपभूत सुख को, स्वरूपभूत प्रसन्नता को हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की वास्तविकता, वास्तविक प्रसन्नता को, वास्तविक आनंद को, वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, निरावरण रूप से, स्पष्ट रूप से उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप के साथ निरावरण रूप से जुड़ना पड़ेगा। हम आवरण से अन्य समझ करके जुड़े तो हैं, परंतु अन्य समझ कर ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये अलग है, इस प्रकार जो द्वेत भाव है, उपनिषद हमारे इस द्वेत को दूर करके अद्वैत में, अद्वैत स्वरूप में हमारी निष्ठा कराती है। इसीलिए उपनिषद ब्रह्म विद्या है। और इस ब्रह्म विद्या में जो ईशावास्य उपनिषद है वो अपना एक विशिष्ट स्वरूप रखती है। इस ईशावास्य उपनिषद के स्वरूप पर, मंत्र पर कल से हम लोग विचार प्रारंभ करेंगे। आज तो केवल भूमिका के रूप में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हमें भगवान ने ये मनुष्य शरीर, जैसे मैंने कहा, और बड़ी कृपा है उनकी कि हम उस चीज को सोचें, समझें, विचार करें और केवल सुने नहीं, उसमें आत्मचिंतन करें, आत्मा अवगाहन करें, अपने अध्यात्म योग के साथ जुड़ें। क्योंकि जीवन में शांति प्राप्त करने का कि सब व्यक्ति, ये प्रश्न जो देवहूति ने उठाया, ये प्रश्न केवल माता देवती का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है कि हमें जीवन में शांति नहीं है। विषय में इंद्रियां चली जाती हैं, इंद्रियां विषयों में आ जाती हैं, दिन रात विषयों के ऊपर, इंद्रियों के अश्रु पर आरूढ़ होकर के संसार के विषयों में विचरण करते हुए, संसार के भोगों को भोगते हुए व्यक्ति को कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती, कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न था माँ देवती का। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति का, इतना जीवन यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमारा इसी बात में निकल रहा है। हम दिन रात विषयों के साथ विचरण करते हैं, परंतु वास्तव में जीवन की शांति नहीं मिली, कभी मन तृप्त नहीं हुआ। तो आइए उसके लिए हम अध्यात्म से जुड़े। अध्यात्म से जुड़ने के लिए हमें तीनों शरीरों का, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों को समझना होगा। इन तीनों शरीरों के पीछे जो पंच कोष है, पंच कोष, पंच तत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, और इन सब पंचीकृत को अलग करते हुए, अलग अलग करते हुए, मन बुद्धि को अलग करते हुए, हम जब बुद्धि इन तीनों आवरणों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब को अलग करते हुए एक एक परत को हटा करके जब देखेंगे, तो तब भीतर जहां कुछ नजर नहीं आता, जहां कुछ नहीं रहता है, वहीं वो रहता है, सब कुछ रहता है। और सब कुछ रहने पर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, जिसके लिए वेदांत उपनिषद उस स्वरूप निष्ठा को हमें जगाती है, उसकी ओर हमें आना है। आइए ऐसे इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए भगवान के से प्रार्थना करते हुए, और हमें अपने जीवन को सार्थकता के लिए, जीवन सफल हो, बहुत निकल गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ये थोड़ी भी जो जाने को तैयारी में करिए, अब भी बात बन जाए, अब भी बात समझ जाए, कोई बात नहीं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब जागो तब सवेरा समझो, जब जाग खुल जाए, जब जाग गए, जब बात समझ में आ गई, जब भीतर हमारा विवेक जाग गया, और तभी समझो कि सवेरा हो गया। विवेक को जगाना है, जो विवेक सोया हुआ है, विवेक शक्ति तो है परंतु हमारा विवेक सोया हुआ है, इस सोए हुए विवेक को जागृत करने के लिए ही हमें बार बार संत चेतावनियां देते हैं, बार बार सदग्रंथ हमें जगाते हैं, जागो जागो, जागना हमको है नारायण, उत्तिष्ठम जागृतम प्राप्तम बोध वरान, अर्थात उठो जागो। रोज तो हम बिस्तर में पहले जागते हैं फिर उठते हैं, परंतु यहाँ उपनिषद कहती है पहले उठो फिर जागो, माने पहले प्रयत्न करो, कोशिश करो, उठो का अभिप्राय है कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थी बनो। आज तक पुरुषार्थ किया, धन के लिए पुरुषार्थ किया, धर्म के लिए पुरुषार्थ किया, अर्थ के लिए पुरुषार्थ किया, इन चीजों के लिए पुरुषार्थ किया, पर सही पुरुषार्थ तब होगा मोक्ष के लिए जब हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करो, मले जा उठो, कोशिश करो जागने की, माने विवेक को जगाने की। जब आपका विवेक भीतर जागेगा तभी आप अब उस आत्मा का बोध, प्राप्तम बोध बरान, उस अपने स्वरूप का बोध आपको हो पाएगा। जब तक जागोगे ही नहीं, निद्रा में पड़े मोह निशा सब सो विनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे सो निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता रहता है, और स्वप्न देखते देखते कभी बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई देता है, उसे भय लगता है, कभी बहुत मीठा मधुर सपना आता है, अच्छा लगता है, तो वो जागने पर कहता है बहुत अच्छा सपना देख रहा था, तब वो सोचता है कि उसे स्वप्न मैं कभी कभी बहुत मीठा सपना, उसी तरह से ये मोह की निद्रा में कभी हमारे आंखों के सामने बड़े भयावह दृश्य आते हैं और कभी बड़े मधुर मधुर सुंदर सुंदर दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। और उसी मोह की निद्रा में उन्हीं दृश्यों को देखते हुए जैसे हम रात्रि में पड़े रहते हैं, वैसे संसार में जागते हुए भी, चलते हुए भी, खाते हुए भी, बैठते हुए भी, हर काम करते हुए भी हम एक मोह की निशा में पड़े हुए हैं। और इसमें कभी संसार के दृश्य हमारे आंखों के सामने बड़े मधुर आते हैं तो उसमें मुग्ध हो जाते हैं, कभी बड़े भयानक आते हैं तो हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं, ट्राई ट्राई करने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी संसार में ये मोह लीला, हमारी भी जो लीला चल रही है ना, तो ये मोह लीला चल रही है। इस मोह लीला को छूटने के लिए, ये मोह लीला हमारी खत्म हो, ये इस मोह लीला का अंत, बोले ये मोह लीला कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, ये मोह लीला चलते चलते बहुनानी जन्मानी, बहुत जन्म हो गए, हर जन्म में ये मोह की लीला हुई और कभी मरे कभी जन्मे, पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम के साथ ये मोह लीला का क्रम चलता रहा। अब तो बस इस लीला को यही बंद करो, रोको, बोले उठो, प्रयास कोशिश करो, जागो, जागने के लिए जिसमें हमारी आंख खुले, हम देख सकें स्पष्ट रूप से, हमारी ये मोह निंद्रा भंग हो सके और अपने स्वरूप को पहचान सकें, इसके लिए आइए प्रयास करो, कोशिश करो कि हम अपने भीतर, अपने आप में, अपने अंतः स्वरूप से, भीतर के उससे जुड़ सकें, भीतर के साथ हमारी स्थिति हो सके। उसके लिए अपने विवेक को प्रखर करना है, विवेक दृष्टि, और विवेक दृष्टि के साथ अपने अंतः आत्म स्वरूप के साथ जुड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ और ठीक कल से 9 दिन के हमारे पास है, जितने मंत्र हो सके विधिवत, मुझे स्मरण भी नहीं था अभी अपने उससे कहा भाई ने कि अब मैंने पिछली बार ईशावास्य के लिए कहा था, मुझे ध्यान आ रहा था और मैं अपने आप में बहुत वो थी कि मुझे अभी अमरावती में मधु बाबू मिले तो माता जी आप इस बार जो है ना वैराग्य शतक पर बोलना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उनका वैराग्य से, और एक सज्जन मिले तो माता जी आप इस बार ना कोई भक्ति पर विषय लेना, मन का ठीक है, मैं सबकी सुनती रही, मन का जो भगवान बुलाएगा, नीचे से मैं वही सोच गया और मेरे बिल्कुल विस्मृत हो गया था कि मैंने ईशावास्य उपनिषद पर के लिए बोला हुआ है, तो इसलिए मुझे ये बात स्मरण बिल्कुल भी नहीं थी और अच्छा लगा मुझे कि मेरा विषय और जो मुझे बहुत प्रिय है वो मैंने कहा हुआ है, तो कल से ईशावास्य उपनिषद के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे जितना भगवान कराएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।